अध्याय नौ पद विन्यास। शब्द समूह रूप विन्यास का मूल धन है। शब्दों की सामग्री को नाना रूपों में सजाकर कविता में रूप संबंधी भंगिमा लाई जाती है। जिन शब्दों के सहारे एक कवि एकदम सीधी सादी सपाट कविता लिखता है, उन्हें को नवीन क्रम में सजाकर भावुक कवि मार्मिक सौंदर्य पैदा कर देते हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने जिन शब्दों के द्वारा घोर इतिवृत्तात्मक और तथ्यपरक कविताएं लिखीं, प्रायः उन्हीं को लेकर छायावादी कवियों ने नया चमत्कार पैदा कर दिया। कालिमा लालिमा यामिनी आदि शब्द वही हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं तो उनका रूप यह होता है। उस काल पश्चिम की ओर रवि की रह गई बस लालिमा, होने लगी कुछ कुछ प्रकट से यामिनी की कालिमा। और प्रसाद लिखते हैं तो यामिनी का रूप यह हो जाता है। मधुर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास तथा कालिमा की शोभा ऐसी होती है। कालिमा धुलने लगी धुलने लगा आलोक। गुप्त जी के यहाँ यामिनी प्रकट होती है और प्रसाद के यहाँ धीर पद विन्यास करती हुई आती है। खट्ट से प्रकट होने में निरी गद्यात्मकता है तो पद विन्यास में भाव भंगिमा है। गुप्त जी की कालिमा का भी यही हाल है। उनकी कालिमा भी प्रकट होती है जबकि प्रसाद की कालिमा धुलती है। यद्यपि ये दोनों क्रियाएं भिन्न हैं और एक जगह अंधकार बढ़ने का वर्णन है तथा दूसरी जगह चंद्रमा के आलोक से उसके घटने का, फिर भी धुलने में जो कोमलता है वह देखने योग्य है। इसी को गुप्त जी लिखते तो शायद कहते कि कालिमा हट गई और उसे हटने में जो खट की आवाज़ होती है उससे श्रुतियों को ही नहीं बल्कि रुचि को भी धक्का लगता। इसका अर्थ यह नहीं है कि छायावादी कवियों ने संस्कृत के वजनी शब्दों का प्रयोग किया और द्विवेदी युग के कवियों ने हल्के शब्दों का। वास्तविकता यह है कि द्विवेदी युग के कवियों ने भी संस्कृत के बड़े बड़े तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। हरियोद का प्रिय प्रवास अपनी तत्सम बहुलता के लिए प्रसिद्ध है। स्वयं द्विवेदी जी ने कविता में संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कम नहीं किया है, जैसे कविता के प्रति उनके प्रसिद्ध कविता का यह अंश। श्रम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा कविन्द्र कांते कविते अहो कहाँ। इस छंद में विचित्र वर्णाभरणे जैसे शब्द नाद तो बहुत करते हैं परंतु ध्वनित कुछ भी नहीं करते। रसराशि रंजिते तथा कविन्द्र कांते कविते वैसी सानुप्रास पदावली के बावजूद मर्म को स्पर्श करने वाला किसी तरह का संगीत इसमें नहीं मिलता। इसमें श्रम्य रूप रस राश विचित्र वर्णाभरणे तथा अलौकिकानंद जैसे बड़े बड़े और सौंदर्य सूचक शब्दों के होते हुए भी उसे पढ़कर आँखों के सामने कविता का न तो कोई श्रम्य रूप ही सामने आता है, न मन रस सिक्त ही होता है और न तो अलौकिक आनंद ही मिलता है। अमुक सुंदर है कह देने से मन उसकी सुंदरता का कायल नहीं हो जाता। स्वशब्द वाचत्व से काव्य सौंदर्य नहीं बढ़ता। तात्पर्य यह है कि संस्कृत के गुंजायमान शब्दों का प्रयोग करके भी द्विवेदी युग के कवि भाषा में वह मोहकता न ला सके जो छायावाद के कवियों ने ला दी। उदाहरण के लिए पंथ की प्रथम रश्मि से यह एक शब्द चित्र लीजिए। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधुबाल स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। पलक सुवर्ण सुरभि स्पंदन जैसे तीन तीन वर्णों के छोटे छोटे शब्दों से पंत ने जो मोहक और सजीव वातावरण पैदा कर दिया है वह भारी भरकम शब्दों के द्वारा भी द्विवेदी युगीन कभी न कर सके। संस्कृत के बड़े बड़े तथा अश्लिष्ट अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से साकेत कामायनी से कहीं अधिक समृद्ध है। कामायनी पढ़ते समय दो तीन बार से अधिक शायद ही शब्द को उठाना पड़े, किंतु साकेत पढ़ने के लिए तो शब्दकोश को एकदम साथ ही लेकर बैठना पड़ेगा और कहा नहीं जा सकता कि ये कहीं पृष्ठ पर कितनी बार शब्दकोश खोलने की नौबत आएगी। इतना होते हुए भी भाव और भाषा की दृष्टि से साकेत तथा कामायनी में कौन अधिक समृद्ध है इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। भाषा शब्दों की संख्या से धनी नहीं होती, धनी होती है उनकी भाव व्यंजकता से। द्विवेदी युग की कविता की तुलना में छायावाद की समृद्धि का रहस्य यही है। पुनरुत्थान भावना के प्रभाव से संस्कृत के तत्सम शब्दों का पुनरुत्थान 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही हो गया था और यह पुनरुत्थान हिंदी के अतिरिक्त बंगला, मराठी, गुजराती आदि सभी भारतीय भाषाओं में हुआ। फलतः खड़ी बोली की कविता में मध्ययुगीन ब्रजभाषा तथा अवधि काव्य के तद्भव शब्दों का लोप हो गया। हिंदी की अपनी परंपरा के असंख्य लोक प्रचलित तथा साहित्य रूढ़ शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया। इस दिशा में बंगला हिंदी की अग्रणी है। माइकल मधुसूदन दत्त और रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला भाषा को संस्कृत के तत्सम शब्दों की सहायता से एकदम नया रूप दे दिया। हिंदी में इस तरह का प्रयत्न आचार्य महाभूषण द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि ने भी किया, परंतु छायावादी कवियों ने अपने आचार्यों की अपेक्षा बंगला के महाकवियों से प्रेरणा ली। प्रसाद और निराला के शब्द समूह पर रविंद्रनाथ ठाकुर की पदरचना का प्रभाव स्पष्ट है। निराला की पहली कविता जूही की कली के पदों में बंगला कविता की पदावली की अनुभूति सुनाई पड़ती है, विशेषतः उसके आरंभ में। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली, दृगबंध की शिथिल पत्रांक में। यहाँ विजन वन वल्लरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन अथवा चरणों में कुंजलता पुंज और उपवन सर सरित गहन गिरिकानन जैसे पदोच्चय रविंद्रनाथ की कविताओं की पदों की गूंज से भरे हैं। ये पद समूह एकत्र ही रविंद्रनाथ की किसी कविता में भले ही न मिले और निराला ने जानबूझकर एक ही जगह से उन्हें भले ही न उठा लिया हो, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी पदरचना का प्रेरणा स्रोत वही है। यहाँ तक कि इनका उच्चारण भी थोड़ा सा बंगला के मुखसुख परंपरा की आकांक्षा रखता है। पंत का यह कहना एक हद तक ठीक है कि निराला के मुख छंदों के पद प्रवाह में बंगला के मुख छंदों के पाठ का आभास होता है, आभास ही होता है, वस्तुतः वह ज्यों का त्यों नहीं है। निराला के काव्य संस्कार में रविंद्रनाथ के काव्य का बहुत अधिक हाथ है, इसे स्वयं निराला ने कई बार स्वीकार किया है। निराला के सम्मुख रविंद्रनाथ आजीवन प्रतिद्वंदी के रूप में रहे। गुरुदेव के प्रति निराला के मन में बड़े ही स्वस्थ स्पर्धा रही है। वे रविंद्रनाथ को सामने रखकर हिंदी को समृद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। निराला के सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति कविता को रविंद्रनाथ की शाहजहां कविता के साथ पढ़िए तो दोनों की पदावली के ध्वनि साम्य का पता चलेगा। एक और विक्षण अराल बज रहे जहाँ जीवन के स्वर भर छंद ताल मौन में मंद्र हैं, तो दूसरी ओर हीरा मुक्ता मणिकेर घटा जैनो शून्य दिगंतेर इंद्रजाल इंद्रधनुष छट्टा। प्रसाद की पदावली के पीछे भी बंगला संस्कार कितना था, इसका उल्लेख शुक्ल जी ने अपने इतिहास में किया। शुक्ल जी के अनुसार उनके परिशीलन से पदलालित की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही। प्रसाद के मधुर माधव मधुपूर्ण अंतरिक्ष के इंदिवर में जो इंद्रजाल दिखाई पड़ता है उसका सूत्र बंगीय पदावली में मिलता है। पंत ने पद चयन में अनेक स्रोत का प्रयोग किया जिसमें से रविंद्र काव्य की भी एक है। मधुर गंध अंध वायु अथवा गंध मुग्ध हो अंध समीरण गंध विदुर समीर निप निकुंज आदि अनेक पदों को उन्होंने अपना समझ कर अपना लिया। कहीं कहीं उन्होंने भाव के साथ साथ पूरी पदावली को भी थोड़े से हेर फेर के साथ रख लिया। जैसे उर्वशी की इन पंक्तियों में तरंगित महासिंधु मंत्र श्रांत भुजंगेर मतो परिच्छिलो पद भ्रांते उच्छ्वसित फड़ा लक्ष्य शतो का परिवर्तन पंत जी के परिवर्तन में इस प्रकार देखा जा सकता है। आलोड़ित अम्बुधि फेनोत्त कर शतदल फन मुक्त भुजंगम सांगित कर करता नर्तन। तात्पर्य यह कि छायावादी कवियों ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को सीधे संस्कृत कोशों अथवा काव्यों से न लेकर बंगला के माध्यम से लिया और इसका कारण था रविंद्रनाथ के कालिदास जैसे कवि के शब्द संस्कार से तत्सम शब्दों को लेकर भी नवीन भावों के ऐसे प्रवाह में सजो दिया कि वे कई अर्थवत्ता से भर उठे। रविंद्रनाथ ने निर्जीव से लगने वाले संस्कृत शब्दों में भावों की नवीन संजीवनी डालकर उन्हें सजीव कर दिया। इसीलिए इन पुनर्जीवित शब्दों ने छायावादी कवियों का ध्यान विशेष आकृष्ट किया। छायावादी कवियों ने संस्कृत के शब्दों को भाव रंजित और कल्पना स्फीत करके एकदम नया रूप दे दिया। छायावादी कवियों के इस पुनः संस्कार कार्य का महत्व तब मालूम होगा जब हम किसी छायावादी कविता का संस्कृत रूपांतर करके मूल के साथ और फिर संस्कृत की प्राचीन कविता के साथ उसकी तुलना करें। उदाहरण के लिए पंत के निम्नलिखित पंक्तियों को लें। छोड़ ध्रुवों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन। इसके संस्कृत छाया एक विद्वान ने इस प्रकार की है। त्यक्त्वा द्रुमाणमिहं मंजुलाभां विहाय मायां प्रकृते रुद्राणां वाले सुजाले तव कुंतलानां कथम प्रद्युम्नामि विलोचने में। पंद की कविता कोई प्रौढ़ छायावादी रचना नहीं, एकदम आरंभिक दिनों में ही इसकी रचना हुई थी। फिर भी यदि इसके संस्कृत रूपांतर को ऐतिहासिक सूझ वाले किसी संस्कृत पंडित के सामने सुना दिया जाए तो वह इसकी पदावली के आधार पर ही इसकी प्राचीनता में संदेह कर बैठेगा। यद्यपि द्रुम, प्रकृति, माया, आभा, कुंतल, विलोचन आदि संस्कृत के पुराने ही शब्द हैं, फिर भी एकत्र इन शब्दों का प्रयोग तथा इनका क्रम कुछ ऐसा है कि इनसे प्राचीनता का आभास नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात तो इन पदों में अनुस्वित वह भावना है जो स्पष्ट रूप से इन शब्दों के नवीन विन्यास की घोषणा करती है। इधर एक सुहृद पंडित ने कामायने पर भी संस्कृत अनुवाद किया है और इसका अनुवाद भी छायावादी पद विन्यास की नवीनता की पुष्टि करता है। यह सब कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि छायावादी भावुकता तथा कल्पना ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को पुनर्जीवित तो किया परंतु उनका विन्यास इतना नया कर दिया कि वे छायावादी हो गए। यह भावना और कल्पना शक्ति का ही प्रभाव है कि छायावादी पद रचना द्विवेदी युग की अपेक्षा मांसल प्रतीत होती है। यदि उपमा का सहारा ले तो कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन पदावली पतझर का निष्पत्र नंगे टहनियों वाला वृक्ष है तो छायावादी पदावली वसंत की हरे भरे पत्रों पुष्पों से लदी हुई वनराजी। पद रचना में छायावाद की होड़ ब्रजभाषा से थी। ब्रजभाषा के समर्थकों का कहना था कि खड़ी बोली में कविता हो ही नहीं सकती। उनने खड़ी बोली की खरखराहट इतने कर्णकटु परुष और पौरुषमय लगती थी कि लोग प्रायः इसे कविता जैसी कोमल वस्तु का माध्यम बनाने से इनकार करते थे। जो लोग ब्रज माधुरी में पगे थे उन्हें द्विवेदी युग की तथ्यवादी कविता से संतोष न होना स्वाभाविक था। छायावाद ऐसे ही कोमल रुचि वाले लोगों को जवाब देने का उपाय ढूंढ रहा था। भाषा की कोमलता छायावाद का पहला वादा था और कहना न होगा कि उसने इसे पूरा कर दिखाया। यहाँ तक कि छायावाद की खड़ी बोली की कविता के सामने ब्रजभाषा खुरदरी मालूम होने लगी। छायावाद की ऐसी कोमल पदावली के निर्माण में पंद का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम है। यदि प्रसाद, निराला और पंत की आरंभिक कविताओं का अध्ययन किया जाए तो साफ मालूम हो जाएगा कि छायावादी कोमल पदावली के निर्माण में किसका कार्य अग्रणी है। प्रसाद प्रथम भाषण जो अधरा में प्रथम भाषण जो अधरान में रहत है तव मोचत प्राण में। जैसे ब्रजभाषा मिली जुली खड़ी बोली की कविता लिख रहे थे अथवा झरना के उबड़ खाबड़ पद्य और निराला छूटना है यद्यपि अधिवास अथवा जूही की कली में जहाँ उसने की केली उस नायक ने निपट निफुदाई की जिसे कहते हैं मलयानी। जैसे गद्यात्मक वाक्यों का कभी ने के प्रयोग का अभ्यास कर रहे थे और कभी यद्यपि तथापि आदि के द्वारा वाक्य में संबंध जोड़ रहे थे। उस समय पंत छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया जैसी कविताओं में दो दो तीन तीन अक्षरों के छोटे छोटे कोमल पदों के द्वारा खड़ी बोली को मृदु बना रहे थे। सब कुछ होते हुए भी प्रसाद का संबंध अधरान से नहीं टूटा था और निराला की किम्बा मतवाली थी वही जूही की कली में किम्बा में मुक्त नहीं हुए थे। परंतु पंत द्विवेदी युग के संस्कारों के प्रभाव में एक ओर साफ सुथरी खड़ी बोली लिख रहे थे तो दूसरी ओर छायावादी भावना के आरंभिक रंग में कारक विभक्तियों तथा सहायक क्रियाओं को भरसक बचाकर मृदुल मंजुल पदावली का सूत्रपात कर रहे थे। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की उस प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में ब्रजभाषा के सहारे ब्रजभाषा की कोमलता का सामना करना खड़ी बोली के कवि की हार होती, इसलिए उन्होंने स्वभावतः तत्सम शब्दों का सहारा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि तत्सम शब्द खड़ी बोली के अपने न थे। तत्सम शब्दों की अपेक्षा ब्रजभाषा और काव्य के तद्भव शब्द खड़ी बोली के कहीं अधिक अपने थे। लेकिन रीति काव्य के विरुद्ध छायावादी कवियों ने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने ब्रजभाषा की जगह संस्कृत से शब्द उधार लिए। यह कार्य वैसा ही था जैसे कोई अपने सगे भाई से झगड़ा करके अलग होने पर उसकी अपेक्षा एकदम पराये से कर्ज ले। परंतु जिस तरह यह अलगाव दुराव ज्यादा देर नहीं चलता, उसी तरह थोड़े दिनों बाद छायावाद ने भी रीति काव्य के अनेक तद्भव शब्द अपना लिए। पंत ने कहीं चल चितवन के बंधन मार टांगे तो कहें उमह बह फैल अकूल अपार हो रहे हैं और खर तृण पात चुने तो अलग। कसीनों के ढिग रुक कर उल्लास प्रकट करना तथा धूम धुआरे खाजर कारे विकरारे बादर कहना आम बात है। निराला भी कभी उत्सुकता से उगता उगता कर ताकने लगते थे तो कभी बोहित के हित तुलसीदास के बोहित बोरा दुष्मण कर लेते थे। और प्रसाद तो ब्रजभाषा के पुराने जाने चिन्ह थे। महादेवी के यहाँ भी हठीले जैसे कई पूर्व परिचित पद मिल जाएंगे। इन पुराने तद्भव शब्दों के अतिरिक्त छायावाद ने अपने मुख सुख के लिए कई तत्सम शब्दों को तद्भव कर डाला। अजान अनजान की पंत ने झड़ी लगा दी, कहीं कान तक खींचे अजान नयन तो कहीं मधुरता से अपनी अनजान। पुराने तद्भव शब्द अपनाने तथा नए तद्भव शब्द गढ़ने के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने अपने आसपास प्रचलित बोली के शब्द भी अपनाए। अछाहे बोली में प्रचलित हौले हौले शब्द को अपनाकर मुखर पिक हौले हौले बोल लिखना फर्रुखाबाद की महादेवी के लिए भी स्वाभाविक ही था। इसी तरह यदि पंत ने समीप के लिए नवल कलियों के धोरे झूम लिखा तो खड़ी बोली प्रदेश के धोरे रहने का ही परिचय दिया। दूसरी ओर प्रसाद की भाषा में कहीं कहीं बनारसी बोली का पुट दिखाई पड़ेगा तो निराला की बोली में वैसवाड़ी का छौ। देशी शब्दों को अपनाना छायावाद में कोई आश्चर्य की बात न थी। छायावादी कविता अपने अतिशय नागरिकता अथवा नागरता के बावजूद लोक तत्वों से युक्त थी। छायावाद जिस सांस्कृतिक जागरण का परिणाम था और आगे चलकर उसने जिस स्वाधीनता आंदोलन का साथ दिया, वह स्वयं मध्यवर्गीय नेतृत्व में लोक जीवन का जागरण और आंदोलन था। गांधी जी के साथ पढ़े लिखे वकील अध्यापक विद्यार्थी डॉक्टर तथा व्यवसायी ही नहीं बल्कि 7 लाख गाँव के रहने वाले किसान भी थे और गांधी जी को इन 7 लाख गाँव के बल का सबसे ज़्यादा भरोसा था। ऐसे सांस्कृतिक जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की कविता का भाव और भाषा में लोक जीवन से प्रभावित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वच्छंदतावादी काव्य की इस लोक भूमिका को आचार्य शुक्ल ने भी भांपा था। स्वच्छंदतावादी काव्य की उत्पत्ति का कारण बताते हुए वे लिखते हैं, नोटेड कामा, पंडितों की बाधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अपण जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों के साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा के स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति छीड़ होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बधकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश के सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। शुक्ल जी ने इस प्रकार के परिवर्तन और पुनर्विधान को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिकता स्वच्छंदता कहा है। लोक तत्व की जिस भूमिका को लेख शुक्ल जी ने किया है, वह श्रीधर पाठक और रामदेश त्रिपाठी वाले प्रथम स्वच्छंदतावादी उत्थान के लिए जितनी सही है, उतनी ही सही प्रसाद पंत निराला महादेवी वाले द्वितीय स्वच्छंदतावादी उत्थान अथवा छायावाद के लिए भी है। भावों की समुचित अभिव्यंजना के लिए भाषा को समर्थ बनाने के प्रयत्न में छायावादी कवियों को कभी कभी नए शब्द भी गढ़ने पड़े। निसंदेह यह शब्द संस्कृत के प्रकृति प्रत्यय आधार पर ही गढ़े गए, परंतु ऊपर से तत्सम प्रतीत होते हुए भी वे वस्तुतः आधुनिक है। संभवतः ऐसे ही शब्दों को विद्वान अर्ध तत्सम कहते हैं। छायावाद का लाडला स्वप्निल विशेषण ऐसा ही अर्ध तत्सम शब्द है। इसी तरह तंद्रिल उर्मिल मांशुल स्वर्णिम आदि अनेक शब्द हैं। शब्द रचना में छायावादी कवियों ने भावों की ही तरह कभी कभी काफ़ी स्वच्छंदता दिखलाई, जो विचारों और भावों की दुनिया में रूढ़ियों को तोड़ने वाले हैं, जो भाषा के क्षेत्र में ही व्याकरण की रूढ़ियों में बंध कर कैसे चल सकते हैं। फलतः पंत ने प्रियाह्लाद की जगह प्री आह्लाद और मरुदाकाश की जगह मरुताकाश संधियाँ की। निराला ने समास रचना के क्षेत्र में ज़्यादा स्वतंत्रता बरती। उन्होंने राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास में समाज संबंधी स्वच्छंदता को सीमा पर पहुंचा दिया। निराला के प्रभावपूर्य तमस्तुर्य आदि हिंदी शब्दों पर संस्कृत व्याकरण के लिए पंडित बहुत दिनों तक नाक भौं से कोड़ते रहे और छींकते छींकते निराला को सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की सलाह देते रहे। आश्चर्य है कि किसी हिंदी वाले ने उन्हें गुरु का व्याकरण रटने की राय नहीं दी। शब्द निर्माण में छायावादी कवियों ने कभी कभी अंग्रेजी के सुंदर पदों का छायानुवाद भी किया। यह तो सभी जानते हैं कि छायावादी कवियों में से सभी के मन में कमोवेश अंग्रेजी रोमांटिक कविता के संस्कार थे। इनमें से पंत में यह संस्कार सबसे अधिक प्रबल था और प्रसाद में सबसे कम, इसीलिए अंग्रेजी पदों का अनुवाद सबसे अधिक पंत ने ही किया। टोह में रहने वाले छिद्रावेशी लोगों ने ऐसे अनुवादों की सूची समय समय पर प्रकाशित की है। इन विद्वानों ने इतना दुख उठाकर परिश्रम पूर्वक यह जो उद्घाटन कार्य किया है उससे और चाहे जो धारणा फैली हो, परंतु छायावादी शब्द रचना के एक उद्गम का पता अवश्य चल गया। खेद इतना ही है कि कवि पर चोरी का आरोप लगाकर अपने हृदय के व्यर्थ ही क्षुब्ध करने की अपेक्षा उन्होंने यह सोचकर प्रसन्नता क्यों नहीं अनुभव की कि इन शब्दों से हिंदी का भंडार समृद्ध हुआ। ब्रोकन हार्ट के वजन पर गढ़ा हुआ शब्द भग्न हृदय हेवनली लाइट के लिए स्वर्गीय प्रकाश, गोल्डन ड्रीम के लिए सुनहला स्वप्न और इसी तरह सुनहला स्पर्श स्वर्ण का काल आदि शब्द बुरे नहीं। छायावादी कवियों ने यह अनुवाद शौकिया नहीं किए। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी का अनुवाद किए बिना वह भाव किसी तरह व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह भावना ही अंग्रेजी संस्कार के देन है। जैसे किसी महत्वपूर्ण उक्ति अथवा शब्द का महत्व प्रकट करने के लिए उसके नीचे रेखा खींचना। पहले के लोग ऐसा करते थे या नहीं इसका पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि यह प्रवृत्ति आधुनिक और यूरोपीय है। ऐसी स्थिति में अनुवाद के सिवा और रास्ता ही क्या है, और पंत ने हार कर यही रास्ता अपनाया जब यह लिखा। अचल रेखांकित का भी थी कर रही प्रमुखता मुख्य छवि के काव्य में। अंडरलाइन करने के लिए रेखांकित करना छोड़कर और क्या कहा जा सकता था, और यदि इस मुहावरे को छोड़कर सीधे सीधे प्रमुखता की बात कह दी जाती तो वह चित्र खड़ा न होता। अर्थ विवेक छायावादी कवियों में इतना अधिक था कि उन्होंने प्रायः पर्याय शब्दों में भी अर्थ भेद का पता लगाकर प्रसंग के अनुकूल उनका प्रयोग किया, जैसे लहर तरंग बीच उर्मी हिल्लोल आदि तथा कथित पर्यायवाची शब्दों में भी भिन्न अर्थ छायाएँ हैं। इन अर्थ छायाओं का अनुवाद छायावाद में पूरा उपयोग किया गया है। इस बात के उत्पन्न का ध्यान इतना अधिक था कि उन्होंने पल्लव की भूमिका में यहाँ तक कर डाला कि नोटेड कामा रिपिल विलो वेव टाइट आदि वस्तुओं के सूक्ष्म भेदों को भेद द्योतक शब्दों को गढ़ने की ओर संस्कृत कवियों का उतना ध्यान नहीं रहा जितना तुल्यार्थ शब्दों को बढ़ाने की ओर। नोटेड कामा बंद। शब्दों में अर्थ विवेक करते समय छायावादी कवियों ने शब्दकोश अथवा प्रचलन की अपेक्षा अपने ध्वनि शब्दबोध से अधिक काम लिया। अपने इस रुचि का विस्तृत परिचय पंत ने पल्लव की भूमिका में दिया है। उनके अनुसार एनोटेड कामा भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द प्रायः संगीत भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं, जैसे भ्रू से क्रोध की वक्रता, ब्रुकुटु से कटाक्ष की चंचलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्नता रुचिता का हृदय में अनुभव होता है। वैसे ही हिलोर में उठान, लहर में शरीर के वक्ष हल्की कोमल कंपन, तरंग में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठकर गिर पड़ना, बड़ो बड़ो कहने का शब्द मिलता है। बीच में से जैसे किरणों में चमकती हवा के पलने में हौले हौले झूलती हुई हंसमुख लहरियों का, उर्मी से मधुर मुखरित हिलोर का, हिल्लोल का लोल से ऊंची ऊंची बाहें उठाती हुई उत्पादपूर्ण तरंगों का आभास मिलता है। इन्वर्टेड कॉमा। इस सिलसिले में पंत ने इस तरह के अनेक रोचक उदाहरण दिए हैं। पंत ने इन शब्दों के जो अर्थ निर्धारित किए हैं वे कहाँ तक सही है यह दूसरा सवाल है। असल बात है इस विचार के पीछे काम करने वाले प्रवृत्ति को पहचानना। ये अर्थ विचार छायावाद के भाववादी अथवा व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण के ठेठ उदाहरण। छायावादी कवि ने शब्दों के अर्थ का निश्चय अपने मन की तरंग के अनुसार किया, इसलिए उन्होंने नाद चित्रों पर ज्यादा जोर दिया। उनका विश्वास था कि हर स्वर का एक चित्र होता है। इस धारणा के अनुसार जब किसी शब्द की ध्वनि चित्र विशेष के भाव की बाधक होती थी तो वे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते थे। जैसे पंत को भाव में ऐसी जान पड़ती हैं जैसे उनके काले काले बाल क्रोध से कठोर रूप धारण करके खड़े हो गए हैं, इसलिए उन्होंने करुण भावों में था आकाश में भावों की जगह भावों कर दिया। यह परिवर्तन भाववादी दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्रवृत्ति पंत के अतिरिक्त निराला में भी थी। मेरे गीत और कला निबंध में उन्होंने संस्कृत के श ल व ल और हिंदी के स म ब ल संगीत की जो रोचक व्याख्या की है वह भी इसी प्रवृत्ति की सूचक है। उनके लिए वर्ण चमत्कार इसी में था कि एक एक शब्द बना ध्वनिमय आकार कर रहे। शब्द रचना संबंधी संगीत का जहाँ तक संबंध है, छायावादी कवियों ने अलग अलग एक एक शब्द के संगीत पर ध्यान रखने के साथ ही संपूर्ण शब्द संगीत अथवा शब्द गुंफन के संगीत पर भी ध्यान रखा। शब्द संगति बैठाने में इन कवियों ने स्वर अथवा व्यंजन संबंधी अनुप्रास का सहारा लिया है। निराला में यह प्रवृत्ति अधिक प्रबल दिखाई पड़ती है। जैसे दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे। यहाँ दिवसावसान आसमान, समय मेघमय तथा सुंदरी परी से धीरे में स्वर और व्यंजन संबंधी अनुप्रास छटा देखने योग्य है। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण निराला की ही गीतिका के एक गीत से ले। वे गए असह दुख भर वारित झर 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 कर नदी कल 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 छल छल सी वह छवि दिगंत पल की घन गहन गहन बंध दहन असहन निश्चल की कहती प्रिय पथ दुस्तर वे गए असह दुख भर। निराला की यमुना के प्रति कविता में शब्द संगीत की है अनुप्रासिक छटा प्रचुरता में देखी जा सकती है। पंत की शब्द संगति ठीक ठीक अनुप्रासों पर आधारित प्रतीत नहीं होती, शायद इसीलिए कि उनके यहाँ शब्दों का आपसी संबंध अधिक सूक्ष्म होता है। इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि छायावादी कवियों के शब्द चयन का मुख्य सिद्धांत श्रुति माधुर्य था। इसके अतिरिक्त वे एक और प्रयोजन से शब्द चयन करते थे। यह प्रयोजन है सुंदर सुंदर स्मृति चित्र जगाना। चित्रप्रिय छायावादी कवियों ने कभी कभी मूल भाव अथवा विषय वस्तु की अपेक्षा करके और कभी उसके स्वाभाविक पथ से थोड़ा इधर उधर हटकर मोहक स्मृति चित्र जगाने के लिए शब्द योजना भी की। महादेवी और पंत में यह प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। कुल मिलाकर यदि छायावाद के समस्त शब्दों की सूची बनाकर विचार किया जाए तो पता चलेगा कि असीम आनंद स्वप्निल तंद्रिल उर्मिल नीरव निश्वास उच्छ्वास स्पंदन कंपन सिहरन उन्मन गुंजन कलकल टलमल छल छल आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी आवृत्तियाँ बहुत अधिक हुई हैं। यह शब्द छायावादियों के तकिया कलाम से हो गए थे। इन शब्दों का यदि थोड़ा और बारीकी से अध्ययन किया जाए तो मालूम होगा कि सभी छायावादी कवियों के तकिया कलाम एक से नहीं हैं। पंत के यहाँ स्वप्निल उर्मिल मृदुल आदि ज़्यादा हैं, प्रसाद के यहाँ मधु माधव माधवी आदि, निराला के यहाँ नव या फिर विराटता के बोधक बड़े बड़े शब्द और महादेवी के यहाँ दीप बाती तुली ऊष अश्रु आदि। पर हर छायावादी कवि के अपने कुछ प्रिय शब्द हैं और उन शब्दों से उनकी पूरी प्रवृत्ति का पता चलता है। पंत के शब्द अरूप और वायवी अधिक हैं क्योंकि वे कल्पना प्रधान थे। प्रसाद के शब्द मधु की तरह प्रगाढ़ अधिक हैं क्योंकि वह गहन अनुभूतियों के कवि थे। निराला के शब्द अनेक प्रकार के हैं क्योंकि उनमें प्रवृत्ति बहुलता है। कहीं उनकी पदावली विराटता का भूत कराती है, कहीं विद्रोह का और कहीं गाढ़ता का। माँ देवी की पदावली से अतिशय अलंकृति का आभास मिलता है। पंत के शब्द यदि कुसुम हैं तो महादेवी के पद माणिक्य। महादेवी के शब्दों में रत्न की सी चमक कठोर तथा छटापन मिलता है, इससे उनके स्वभाव के अतिशय परिष्कार तथा तराश का बोध होता है।